ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवार उल हक। सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने से संबंधित ऐतिहासिक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 आज संसद के निचले सदन में पेश किया, जिस पर चर्चा भी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्री मोदी ने इन तीनों विधेयकों पर अपने विचार रखते हुए ये भी कहा कि इस विषय को राजनीति के तराजू में नहीं तोलना चाहिए और इसका श्रेय वो विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन से जुड़ी कुछ सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हुई है और जब जब चुनाव आया है जिस दल ने महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का विरोध किया है देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबने 2023 में सहमति से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। किसी का राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो इतिहास गवाह है कि ये किसी के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, देश के लोकतंत्र और सामूहिक निर्णय के पक्ष में जाएगा। जिन्हें इसमें राजनीति की बू आ रही है वे खुद के 30 वर्ष के परिणामों को देख लें, उनका इसमें ही फायदा है, नुकसान से बच जाएंगे, राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बवंडर खड़ा किया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज सदन में कहना चाहता हूं कि दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में जो सरकारें रही जिनके कालखंड में परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। जब तमिलनाडु की एक सांसद ने गारंटी देने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी देता हूं, वादा शब्द चाहें तो इसका इस्तेमाल करता हूं, तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो उसका इस्तेमाल करता हूं, नियत साफ है तो शब्दों का खेल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 25-30 वर्ष पहले महिला आरक्षण का विचार आया था तभी इसे लागू कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सा बनाने का सौभाग्य मिला है। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं, ये उसका अधिकार है। उन्होंने कुछ विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि समय समय पर सभी ने 33% महिला आरक्षण का समर्थन किया तो लेकिन किसी न किसी बहाने से इसे रोकने का प्रयास भी करते रहे। उन्होंने कहा कि तरह तरह की बहानेबाजी और चीजों को उलझाना अब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है, अगर आप इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि मुझे इसका राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को इसका लाभ नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि हमें इसका श्रेय नहीं चाहिए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि राष्ट्र जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मन स्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैद करके एक राष्ट्र की अमानत बना देते हैं, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देते हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति के रूप स्वरूप को तो तय करेगा ही, देश की दशा और दिशा भी तय करने वाला है। श्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए इसे राजनीतिक तराजू से न तोलने को कहा, यह राष्ट्रहित का निर्णय है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश, विशेष रूप से नारी शक्ति, हमारे निर्णय को तो देखेगी, निर्णय से ज्यादा हमारी नियत को देखेगी। उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि ये अवसर है कि पुरानी जो मुश्किलें रही हैं उनसे बाहर निकलें, हिम्मत से आगे बढ़ें और नारी शक्ति के राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करें तथा इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए लोकसभा में कहा कि प्रस्तावित परिसीमन से किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और जिसकी जो ताकत है वो बनी रहेगी। श्री मेघवाल ने 2023 में पारित नारी वंदन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि आज उस निर्णय को लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि किए जाने का प्रावधान है और ऐसे में सीटों की संख्या बढ़कर 815 हो जाएगी और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संविधान संशोधन विधेयक को महिलाओं, जाति जनगणना, संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार परिसीमन को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गोगोई ने कहा कि सोनिया गांधी ने पिछली लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा के दौरान यही कहा था कि महिला आरक्षण लागू हो लेकिन इसे परिसीमन के साथ मत जोड़िए, लेकिन सरकार ने उस वक्त विपक्ष को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि सरकार का रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने में विलंब करना चाहती है। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण कानून में संशोधन से संबंधित विधेयकों पर जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। भाजपा सांसद ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद दक्षिणी राज्यों की कुल हिस्सेदारी 23.9% बनी रहेगी और परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर शासन, बेहतर जवाबदेही और बेहतर पहुंच के लिए परिसीमन एक संवैधानिक कर्तव्य है जिसका निर्वहन आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तीनों विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक के बहाने नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में है लेकिन भाजपा इसके खिलाफ है। सपा सांसद ने कहा कि हम महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा के अंदर जल्दबाजी क्यों है। सच तो ये है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है, वो जाति जनगणना को टालना चाहती है और ऐसा कर वह आरक्षण को टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तृणमूल कांग्रेस के काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि चुनावों के बीच विशेष सत्र की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को लाने का मकसद सिर्फ सत्तारूढ़ दल के आधार को मजबूत करना है। तेलुगु देशम पार्टी की सांसद बायरेड्डी शबरी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि नारी को नारायण बनाने वाला कदम है। जनता दल यूनाइटेड के नेता दिलेश्वर कामत ने कहा कि इस विधेयक से महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा और महिलाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे पहले इन विधेयकों को पेश किए जाने का विपक्षी दलों ने विरोध किया और संविधान संशोधन पर मत विभाजन के बाद ये विधेयक सदन में पेश किए गए। मत विभाजन में 251 वोट पक्ष और 185 वोट विपक्ष में पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और जातियों के साथ ही ये जनगणना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर संवैधानिक है। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित 3 विधेयकों को पेश किए जाते समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए शाह ने ये बातें कही। महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक में पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती। जैसी ही जनगणना होगी हम जाति जनगणना की मांग करेंगे, जाति जनगणना होगी तो हम आरक्षण की मांग करेंगे, इसलिए आप ये धोखा देना चाहते हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है और सपा सदस्यों के कुछ बयान जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि सपा अध्यक्ष ने जाति जनगणना की बात कही तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार जातियों की जनगणना का निर्णय पहले ही ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा की बैठक आज नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने और दिवंगत पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई तथा प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोंसले को श्रद्धांजलि देने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में आज कोई विधायी कार्य नहीं हुआ। बैठक शुरू होने पर नव निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी सहित 16 नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों ने पद की शपथ ली। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले इन सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इन 16 सांसदों में से 8 भाजपा के हैं, जबकि उसके सहयोगी दलों के 3 सदस्य शामिल हैं। शेष 5 सदस्य कांग्रेस के हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा से इस्तीफा देकर उच्च सदन का रुख किया है। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। सदन में मौजूद सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। नवीन उच्च सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी शपथ ली, जो बिहार से पुनर्निर्वाचित हुए हैं। शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में असम से भाजपा के तेराश गोवाला और जोगेन मोहन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के शिवेश कुमार, छत्तीसगढ़ से भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, हरियाणा से कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और भाजपा के संजय भाटिया, हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस के अनुराग शर्मा, महाराष्ट्र के भाजपा के विनोद श्रीधर तावड़े, ओडिशा से भाजपा के सुजीत कुमार, तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी शामिल हैं। इन सभी के शपथ लेने पर सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सदन ने प्रख्यात पार्श्व गायिका दिवंगत आशा भोंसले तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उच्च सदन की पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी। सभापति ने कहा कि किदवई ने कमजोर तबके के कल्याण के लिए भी काम किया। उन्होंने कहा कि किदवई के निधन से देश ने एक उत्कृष्ट प्रशासक और मुखर सांसद खो दिया है। राधाकृष्णन ने भारतीय फिल्म संगीत में उत्कृष्ट योगदान देने वाली पार्श्व गायिका आशा भोंसले के निधन का जिक्र करते हुए कहा कि वो देश की सबसे बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न और लोकप्रिय आवाजों में से एक थीं। आशा भोंसले का 12 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया था। वो 92 वर्ष की थीं। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोंसले ने संगीत और सिनेमा जगत में अपना एक अनूठा मुकाम हासिल किया था। सभापति ने कहा कि 8 दशक से अधिक लंबे करियर में आशा भोंसले ने कई भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी मधुर आवाज दी और भारतीय संगीत के परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। सदन में सदस्यों ने कुछ पल मौन रहकर मोहसिना किदवई और आशा भोंसले को श्रद्धांजलि दी। राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु रिएक्टर की ऐतिहासिक उपलब्धि और वैज्ञानिकों के योगदान की भी सराहना की। 6 अप्रैल 2026 को कलपक्कम में 500 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक अपनी पहली क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली। किसी परमाणु बिजली घर में पहली क्रिटिकैलिटी वो अवस्था है जब नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया सतत और नियंत्रित तरीके से चालू होती है। सभापति ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र किया और कहा कि उपलब्धि हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्योगों और परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाइयों के निरंतर प्रयासों की सफल परिणति है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से भारत अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है, जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का उपयोग कर अधिक ईंधन उत्पन्न किया जाता है। तीसरे चरण में थोरियम यूरेनियम आधारित रिएक्टर शामिल होंगे। राधाकृष्णन ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में पीएफबीआर में कोर लोडिंग का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन किया था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।